ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. عزیزان محترم، کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا پہلی محرم کو عقیدہ شفاعت، اور ابتدائی گفتگو کی تھی کہ شفاعت کس کیا معنی ہے، شفاعت قرآن مجید میں کس کس مفہوم میں آ رہا ہے. آیات پیش کی تھیں کہ کچھ آیات جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو اللہ نے اجازت دی شفاعت کی، اور کچھ آیات جن میں سے ایک کل پیش کی تھی، ایک آج پیش کر دیں گے، آیت ایسی کہ جس میں شفاعت سوائے اللہ کے کسی کی بھی نہیں ہے. جیسے کل ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا، قل للہ شفاعت و جمیعہ، بس شفاعت اس کے لیے صرف اور صرف، یعنی شفاعت یعنی سفارش، آج ایک اور معنی کرتے ہیں سفارش. جب ہم سفارش کا ترجمہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ بھائی سفارش کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن نہیں، یاد رکھیے کہ سفارش کا حکم دیا گیا ہے. سفارش ترجمہ کر رہا ہوں میں اسی شفاعت کا، شفاعت کا ایک معنی کیا ہے، بلکہ جو اردو میں جو معنی کیا جائے گا وہ کیا کیا جائے گا، یہ سفارش، کسی کی سفارش کرنا. جیسے کسی کی نوکری کے لیے سفارش کرتے ہیں، کسی کے داخلے کے لیے سفارش کرتے ہیں، ہے نا. یہ سفارش دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. غلط یہ کہ کسی نااہل کی سفارش کر دی جائے. نااہلوں کی سفارش کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نااہلوں کی سفارش کا انجام یہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہے نا. مینس 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نااہلوں کی سفارش، جو نااہل لائے گئے، سفارش میں بھرتی کیے گئے، کبھی باہر کی سفارش، کبھی اندر کی سفارش. جب اندر والے آ گئے تو نااہلوں کو بھر دیا، تمام دفاتر میں جب نااہل بھر دیے گئے تو لوگ بیچارے خوار ہو گئے، ہے نا، رسوا ہو گئے اس ملک میں، کیونکہ نااہلوں کی سفارش کی گئی. ٹھیک نا، یہ ہے غلط سفارش. اور ایک ہے صحیح سفارش. اہل کی سفارش نہ کرنا بعض اوقات گناہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اہل ہے اور اس کی سفارش نہ کی جائے. مطلب کوئی نوکری کا اہل ہے اور کسی کی سفارش سے اس بیچارے کو جگہ مل سکتی ہے، وہ نہ کرے اس کی سفارش کی، نہیں میرا تو اصول یہ نہیں ہے، وہ بڑا اصول والا بن جائے، تو اصول والا نہیں بنا، بلکہ اس نے کیا کیا، کسی کے حق کو مار لیا، کسی کے حق کو تباہ کر دیا. اس سفارش کا حکم دیا گیا، خاص طور پہ مومنین کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کی سفارش کرو بھائی. ہاں، نا اہلوں کی سفارش نہ کرو، لیکن اگر کوئی اہل ہے تو اس کی سفارش، خیر اس کے لیے ہم روایات پیش کر دیں گے، لیکن آج پھر بات کو وہیں سے لے کر چلیں گے کہ وہ آیات بھی ہیں قرآن مجید میں جن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سوائے اللہ کی شفاعت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سخت آیات ہیں. کل تو ہم نے ایک آیت پہ کہا، آج ایک اور آیت پیش کریں گے آپ کے سامنے، انتہائی سختی سے منع کیا کہ خبردار اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا سفارشی، اپنا شفاعت کرنے والا کسی کو نہ بنانا. قرآن میں کیا آیت ہے کہتے کیا تم ان کا اختیار کرو گے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی سفارش لیتے ہو، کسی اور کو اپنا شفیع بناتے ہو، شفاعت کرنے والا. کتنی سخت آیت، کن کو اپنا شفیع بناؤ گے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی شفاعت قابل قبول نہیں ہے. آج یہ آیت پیش کریں گے. اب دیکھیے کیا معنی ہے، دیکھیے ایک طرف یہ آیات ہیں اور ایک طرف وہ دوسری آیت، ان کو رکھا جائے گا کہ اللہ نے کہاں کہاں کس کس کو اختیار. جیسے ہم سرنامِ کلام میں آیت کی تلاوت کریں نا آپ کے سامنے روزانہ، یعنی کل بھی ہم نے تلاوت کی تھی، آج بھی تلاوت کی، لا یملکون الشفاعۃ، کسی کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق نہیں ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان ہے، قول و قرار ہے، یعنی جنہوں نے اللہ سے اقرار لیا ہے، قرار لیا ہے، عہد کیا ہے، یا اللہ نے ان سے عہد کیا ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا، ان کی سفارش ضرور اللہ قبول کرے گا. وہ کون سے بندے؟ وہ آتے چلے جائیں گے. اور کل میں نے یہ جہاں ختم کی تھی بات بحر الانوار کی، وہ روایت، اس روایت پر ختم کیا تھا کہ لیس من شیعتنا من انکر اربعہ اشیاء، ہمارے وہ شیعوں میں سے نہیں، ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں جو چار چیزوں کا انکار کر دے. اس لیے اہمیت بتائی تھی کہ شفاعت کی اہمیت کیا ہے، شفاعت کا عقیدہ کیا ہے. پہلی چیز اس میں کیا تھی؟ المعراج، مسلۃ المعراج. معراج کا جس نے انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. مسلۃ القبر، قبر کے سوال جواب کا جس نے انکار کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. خلق الجنت والنار، جس نے جنت اور دوزخ کا انکار کیا، خلقت کا انکار کیا، وہ بھی ہم میں سے. اور چوتھا مسئلہ، آخری مسئلہ کیا تھا؟ شفاعت. جس نے ہماری شفاعت کا انکار کیا اس میں شک ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ایک دو آیتیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے بیان کریں گے آج مطلب کو. اب وہ جو میں نے ایک حصہ تو آیت کا پڑھ دیا سورہ زمر کی 43 آیت، 44 میں تو پڑھ ہی رہے تھے آپ کے سامنے. 43 آیت یہ ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا شفیع، اپنا سفارش کرنے والا بنانا چاہتے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. اے حبیب ان سے کہیے اگرچہ کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اس کے پاس کوئی علم نہیں، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ وہ ملکیت رکھتا ہے، نہ وہ اختیار رکھتا ہے شفاعت کرنے کا، پھر بھی ہے اس سے. اب یہ جو اولو کانا ہے، اولو کانو ہے نا یہاں پہ، اگرچہ تم اس وقت بھی ان سے شفاعت طلب کرتے جبکہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کی ملکیت نہیں ہے شفاعت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے کچھ ایسوں کو اپنا شفیع قرار دیا تھا، ایسوں سے شفاعت طلب کی تھی کہ جو خود اپنے اوپر بھی قادر نہیں تھے. یعنی اللہ غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یا غیر اللہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی نبی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، آپ کسی پیغمبر کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، معاذ اللہ آپ کسی امام سے مدد شفاعت طلب نہیں کر سکتے، ایسا نہیں. بلکہ ان لوگوں کو جو کوئی اختیار ہی اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں، لا یملکون شیء، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. جیسے لوگ بتوں کو اپنا شفیع بنا لیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو وسیلہ ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان سے بھائی اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، ان سے کہا یہ وسیلہ ہے، یہ بت کیا ہے ہمارے، ارے بھائی اس کو شفیع بنا رہے ہو جو خود اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا. جب ان کی مرضی ہوتی تھی توڑ دیتے تھے بھائی ان کو، توڑا تھا نہیں توڑا تھا، یاد ہے جب ابراہ کے ہاتھیوں نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ آج بھی آپ دیکھیے پڑوسی ملک میں کیا ہوا کورونا کے چکر میں، کتنے بڑے بڑے بھاری بت اپنے اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینک دیے. یعنی انہیں معلوم تھا کہ ان کو پھینک دیں گے تو کوئی ریئیکشن، حالانکہ ان کے پیچھے ہزاروں کو مار دیا، لاکھوں کو مار دیا، ہر سال قتل عام کر رہے ہوتے ہیں وہاں، لیکن جب خود پر بنی تو کیا کیا؟ بڑے بڑے بت ٹرکوں میں لا لا کے دریاؤں میں بہا دیے گئے، کورونا پھیل رہا ہے، ان کو تو غرق کرو، ان کو تو ختم کرو، ایسا ہوا نا. تو ان کو اپنا شفیع بنایا، بتوں کو اپنا شفیع بنا لیتے تھے. جیسے وہ جناب عبد المطلب کا تو مقابلہ ہوا تھا، ابرہ کے جب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تو مکے کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا بت، اپنا مال اٹھا کے سب بھاگے تھے پہاڑوں پہ. اور جب وزن بھاری ہو گیا کہ بھاگے کیسے ان سب چیزوں کو لے کے، تو مال لے گئے تھے، بتوں کو وہیں توڑ دیا تھا، بتوں کو وہیں توڑ، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو کہتے تھے یہ تو وسیلہ ہیں، بہانہ سازی کرتے تھے ہمارا وسیلہ ہے، جن کو وسیلہ قرار دیتے تھے ان کو توڑ کر بھاگے، ان کو چھوڑ کر بھاگے. تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب آپ میں اس کی تفسیر میں جائیں گے، شان نزول میں جائیں گے، تو جن لوگوں نے بتوں کو اپنا وسیلہ بنایا تھا، بتوں کے ذریعے سے شفاعت طلب کرتے تھے، اب کیا کیا کچھ لوگوں نے کہ جو ان نظریات کے قائل ہیں جو کہتے ہیں قل اللہ شفاعت و جمیع، بس اللہ کے سوا کسی کی شفاعت نہیں ہے، تو وہ اس آیت کو بھی وہاں ادھر لیا تھا کہ نہیں کسی کو اللہ نے شفاعت کا حق نہیں دیا، اور جو دوسری آیت ہے ان کو سامنے نہیں رکھتے. بھائی آپ دونوں آیت کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، یہاں کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا تم ان کو اپنا شفیع بناتے ہو، سفارشی بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو بناتے ہو؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، جو عقل بھی نہیں رکھتے، کیونکہ بت ہے نا، وہ تو مٹی کے پتھر کے بت بنے، ان کے پاس کیا عقل ہے؟ یا کبھی کبھی جانوروں کو بنا لیتے تھے، ان کے پاس کون سی عقل ہے؟ جانوروں کو اپنا دیوتا بناتے نہیں بناتے لوگ، وہ ناگ دیوتا ہے تو شیر دیوتا ہے تو ہاتھی دیوتا ہے تو بندر دیوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا دیوتا ہے. اور ہم تو ایسی جگہوں پر بھی ہو کے جہاں چوہا بھی دیوتا ہے، چوہے کے پجاری ہیں بھائی، ہاں دیکھے ہیں آپ، یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے میری بات کا، آپ کو یہ علم حاصل، یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں چوہے کی پوجا کرتے ہیں بھائی، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، کتے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کر، گائے کی تو بہت ہی بڑی تعداد پوجا کرتی ہے، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، ہاتھی کی پوجا کر رہے ہیں، بندر کی پوجا کر رہے ہیں، عجیب ہے، الو کی پوجا کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ الو شفاعت کرے گا وہاں، یہ بندر شفاعت کرے گا وہاں، یہ ہاتھی شفاعت کرے گا وہاں، اے نام ہے نا سب کے الگ الگ، یہ ناگ دیوتا، ناگ جو ہے وہ شفاعت کرے گا وہاں پہ، یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کے ان کو آپ شفا بناتے ہو. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، کوئی اختیار ہی نہیں ان کے پاس، ان کی ملکیت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، उनका कुछ भी नहीं, उनको अपना शफी बनाते हो, वला याकलून, ना ही उनके पास अकल है। ये आयत पेश की जाती है ना इस बारे में कि कोई अल्लाह के सिवा किसी की शफात नहीं। अब आइए, एक आयत जैसे कल हमने पेश की थी, अब आइए इसके सामने एक और आयत रख देते हैं, मतलब बिल्कुल वाजे हो जाएगा। अभी हमने आधी बात की तशरीह कर दी ना, अभी मुकम्मल हो जाती है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, यौम अज़िन ला तनफउ शफात इल्ला मन अज़न लहु रहमान व रज़िया लहु कौला। अब देखिए ये भी तो आयत आ गई ना आपके सामने, सूरह ताहा 100 के बाद नंबर है, कोई 8 या 9 होगा, बहरहाल देख लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है इस आयत का। यौम अज़िन क़यामत, अब वो क़यामत का दिन। यौम अज़िन से मुराद क्या है? वो दिन, कौन सा दिन? यौम हिसाब, यौम हश्र, यौम अज़िन ला तनफउ शफात, किसी की सिफारिश काम नहीं आई, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना औलाद, कोई किसी का। ये बतौर कुली, वो जैसे हमने कल कहा था ना कि एक असल उसूल बता दिया गया, किसी की शफात कबूल, ये उसूल है। अब इस्तिस्ना, वो जो कल हमने बात की थी, अब इस्तिस्ना किया जा रहा है बाद वाले हिस्से में। यौम अज़िन ला तनफउ शफात, वो क़यामत का दिन जिस दिन किसी की शफात को कबूल नहीं किया जाए। इल्ला, अब इल्ला आ गया ना, इल्ला का मतलब वही हर्फ इस्तिस्ना, जैसे कल हमने अर्ज किया था कि कानून वो है, इल्ला से फिर इस्तिस्ना किया जाए। इल्ला यस, इल्ला ये मसलन, जैसे कल हमने मिसाल दी थी जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम की खिलकत की, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, है ना, या जैसे वो गुर्राब आया था सिखाने के लिए कि कैसे दफन करना है, या जैसे वो नाक़े साल है, ये सब क्या है? इस्तिस्नात है ना तारीख के। या वो मेंढा जो आया था जन्नत से, दुम्बा जो ज़बीह बना था उनके, यानी जिसका ज़बीहा किया था, जो बदल बना था कुर्बानी की जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के, ये सब क्या है? ये इस्तिस्नात है ना, ये इस्तिस्नात, वो इस्तिस्ना आ रहा है। उसूल क्या है कि उस दिन किसी की शिफात, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। इल्ला, अब इल्ला आ गया, इस्तिस्ना किया था। अब इल्ला का मतलब ये हो कि होशियार हो जाओ, इसके बाद कुछ हैं जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया, जिन्हें अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया। देखिए बात बिल्कुल वाजे हो रही है ना, पहले वाली आयत की भी हमने तशरीह कर दी कि वहाँ मुराद क्या है, वो जिन्होंने गैर खुदा को अपना खुदा बना लिया था, बुत बना लिया था, और ज़्यादा कोई बात करता था कहते थे नहीं ये खुदा नहीं हमारा बल्कि ये क्या है, वसीला है। तो लोग वसीले के ख़िलाफ़ भी जब बात करते तो यही आयतें लेकर आते, हालांकि ये साफ साफ बता रहे कि ये यहाँ मुराद क्या है, वो बुत परस्ती जो करते थे, वो जो अपने खुदा उन्होंने खुद बना लिए थे, ना मालूम किस किस चीज़ को, कोई सूरज को देवता बना लेता था, कोई चांद सितारों को बना लेता था, हवा की पूजा करते थे, समंदर के सामने जाकर समंदर की पूजा करते थे, है ना, ऐसा था, दिन की पूजा रात के इतने मर्जी खुदा बना लेते थे। और अभी भी एक जगह ऐसी जहाँ 365 दिन है साल के और खुदा जो है उनके 400 हैं, 365 से ज़्यादा हैं, हाँ हाँ, वो जिसको चाहे खुदा। मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी वहाँ, मैं हैरान हो गया कि उनको कोई शख्सियत पसंद आ गई, उसे देवता बना दिया। फिर क्या कहा जाए, कहते खुदा नहीं है, वसीला है। अरे वो क्या वसीला बनेगा? एक क्रिकेटर को देवता बना के बैठे, वो वसीला बनेगा? उसको खुद अपनी पता, उसको अपना पता नहीं है क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होगा, उसको वसीला बना दिया। अब देखा आपने कि कहाँ इंसान तबाही के गारों में गिरता है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल कि ऐसा है वहाँ पर कि वो ऐसी शख्सियत को उसको देवता बना दिया, कि ये भी हमारा एक अवतार, अवतार यानी वही देवता, ये भी एक देवता, ये भी एक देवता, ये भी एक देवता। भाई शख्सियत को याद रखना और चीज़ है, शख्सियात को याद रखने का तो अल्लाह ने भी हुक्म दिया, हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, और जो अल्लाह के दीन पर एहसान करे, नेकी से पेश आए, तो उसका जजा यही। अल्लाह ने उन तमाम किरदारों को ज़िंदा रखा कि नहीं रखा? अम्बिया के जिक्र को ज़िंदा रखा, बल्कि ईमान का जुज़ करार दिया। अल्लाह पर ईमान लाने की शरायत में से क्या अम्बिया पर ईमान लाना है कि नहीं? अम्बिया मलाइका पर ईमान लाना है, नाम बेशक याद ना हो लेकिन ईमान लाना है, ज़िंदा रखा ना। तो अल्लाह भी कहता है फ़ज़कुरूनि अज़्कुरकुम, तुम मेरे जिक्र को ज़िंदा करो, मैं तुम्हारे जिक्र को ज़िंदा कर दूंगा। यानी अम्बिया ने अल्लाह के जिक्र को ज़िंदा किया, अल्लाह ने उनको जिक्र को ज़िंदा कर दिया। पैगंबरों ने अल्लाह के जिक्र को ज़िंदा रखा, अल्लाह ने उनके जिक्र को ज़िंदा कर दिया। रसूलों ने अल्लाह के जिक्र को ज़िंदा रखा, अल्लाह ने उनके जिक्र को ज़िंदा कर दिया। औलिया अल्लाह ने अल्लाह के जिक्र को ज़िंदा किया, अल्लाह ने उनके जिक्र को ज़िंदा कर दिया। अइम्मा ताहिरीन ने अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया, अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है ना आसान सी बातें, बिल्कुल बिल्कुल ना सामने की बात है, कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि परवरदिगार भी चाहता है, यानी उसकी मन, उसका मंशा यही है, उसकी मंशा यही है अल्लाह की कि जो भी मेरे दीन को के लिए खिदमत करेगा, दीन की खिदमत अंजाम देगा, मैं उसके जिक्र को ज़िंदा कर दूंगा। वो अलग चीज़ है कि शख्सियात को ज़िंदा रखा ताकि ईमान सलामत है। पूजा का हुक्म थोड़ी दिया भाई, पूजा का हुक्म दिया, हाँ उनको इख्तियार देकर बताइए, इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, ये जो आ रही बात वही आ रही, कौन लोग हैं वो, अब आती है बात, इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, किसी को शिफात का हक नहीं क़यामत के, मगर ये कि जिन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने इजाजत दी है, इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, जिसे अल्लाह का इज्न हासिल है, जिसे अल्लाह की इजाजत, इसका मतलब कुछ लोग हैं ना, तो वो कैसे लोग होंगे, अभी वो तो बात आगे चलेगी, वो कैसे लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ने ये इजाज़त दी है, जिन्हें अल्लाह ने इज्न दिया होगा कि आपके पास ये इज्न है, आपको इख्तियार है, आप जिसकी चाहे सिफारिश कर सकते हैं, तो बस उनकी सिफारिश, उनकी सिफारिश नहीं होगी, क्योंकि ये इख्तियार, कल भी हम इसे बात कर चुके, क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह ने उन्हें दिया है, लिहाजा ये शफात भी अल्लाह ही की शफात कहलाएगी, यानी मासूमीन जो शफात करेंगे इसको भी अल्लाह अपनी शफात करार देगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफात की, मेरी शफात है, पैगंबरों ने शफात की, मेरी शफात है, रसूलों ने शफात की, मेरी शफात है, अइमा तहरीर ने शफात की, मेरी शफात है। उसूल कल मैं आपको बता चुका कुरान से कि जब ऐसे पसंदीदा अफाल करार पाएं, अंजाम पाएं, तो अल्लाह परवरदिगार आलम उनको अपनी तरफ पलटा देता है, अपनी तरफ पलट, ये मेरा फेल है, ये मैंने अंजाम दिया, ये है यहाँ पे शफात का, तो इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, इस्तिस्नानी सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने इजाज़त दी है, अल्लाह का जिन्हें इज्न हासिल है, व रज़िया लहु कौला, और अल्लाह उनके कौल से भी राजी है, यहाँ दो माने हैं, अल्लाह उनके कौल से राजी है, अल्लाह को उनकी गुफ्तगु पसंद है, रज़िया लहु कौला के एक तर्जमा ये भी लिखा है कि अल्लाह को उनकी गुफ्तगु, उनका बोलना पसंद है। तो अल्लाह को किन लोगों का बोलना पसंद है, कैसे लोगों का बोलना पसंद है, समझ में आ रही बात, इसका मतलब कुछ लोग हैं कि जिनके कौल और फेल से अल्लाह मोहब्बत करता है, लिहाजा उनको ये इख्तियार दे रहा है, ये इख्तियार कहाँ दिया जाता है, ये ज़रा सी बात और आपको समझाता है, किसे दिया जाता है इख्तियार, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज भी कहा जाता है ना उसे, जो अल्लाह के इख्तियार को रखता है। देखिए हमेशा याद रखिए, इस उसूल को भी हमेशा याद रखना चाहिए, कोई अपनी जगह किसी को नाइब बनाकर जाता है तो नाइब इख्तियार तो रखता है, ये समझ लीजिए, नाइब इख्तियार तो रखता है, लेकिन नाइब वही नहीं होता जो छोड़ के गया है, वो अलग है नाइब, है ना, इख्तियार देकर जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये वही का वही है, ये वही का वही नहीं है, बल्कि क्या है इसमें फर्क है, ये नाइब है, नाइब का मतलब ये कि नाइब है, अब खलीफतुल्लाह फिर अर्ज होने का मतलब क्या है, नाइब है अल्लाह का, खलीफतुल्लाह का मतलब कि अल्लाह का जाना, अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का नाइब है, तो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का नाइब है, इख्तियार रखता है, क्यों, नाइब बन नहीं सकता जब तक इख्तियारात ना हो। भाई आप और एक और मिसाल दे दें आपको आसानी, नाइब इमाम किसे कहते हैं, इमाम तो नहीं है ना भाई, नाइब इमाम का जुमला ही बता रहा है कि इमाम का नाइब, इमाम और है नाइब और है, इमाम मासूम है नाइब गैर मासूम है, लेकिन इख्तियार तो है ना नाइब के पास, अगर इख्तियार नहीं होगा तो निज़ाम और ये कारवान इंसानियत आगे कैसे बढ़ेगा, इख्तियार है उसके पास लेकिन वो महदूद इख्तियार, जैसे अल्लाह अपने नाइब को इख्तियार दे रहा है लेकिन उलूहियत थोड़ी दे रहा है, कोई उलूहियत तो नहीं दे रहा उसको, इख्तियार दे रहा है, माज़ल्ला जो यहीं पर लोग ना धोखा खा जाते हैं, इसी को समझने की ज़रूरत है कि जब वो नाइब बना रहा है, वो खलीफतुल्लाह बना रहा है तो नाइब बना रहा है ना, उलूहियत थोड़ी दे रहा, इख्तियार दे रहा है, और विलायत तकवीनी भी दे रहा है, यानी चीज़ों को अदम से वजूद में लाने की ताकत भी, सलाहियत भी, जिसको हम मौजज़ा कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे लिए मौजज़ा है ना, हमारे लिए नामुमकिन है, हम आजिज़ हैं इसलिए वो मौजज़ा है, लेकिन जिस मासूम को वो दे रहा है उसका तो इख्तियार है ना, उसे तो अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, सादा सादा से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में ये आवाज़ जाएगी, जहाँ जहाँ भी लोग इसको समाअत फरमाएंगे और मुशाहिदा फरमाएंगे तकरीर को, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेचीदा मसाइल हैं, इनको ज़रा सा बिल्कुल आसानी से पेश कर दिया कि नहीं, शुबे में ना पढ़ें, शुबे में कभी भी ना पढ़ें, इख्तियारात के बगैर नाइब नहीं बनता, वरना देखिए कोई भी मसला पेश आ जाएगा नाइब क्या करेगा, लेकिन वो तो नहीं है ना जो कि अब यहाँ से मसला देखिए, यहाँ से भी अगर कोई चला जाए किसी मुल्क का सरबराह चला जाता है तो वो कहते हैं कि जो स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली का स्पीकर कायम मकाम सदर बन जाता है, सदर चला जाए तो कौमी असम्बली का स्पीकर या सेनेट का चेयरमैन जो भी होगा, खैर मुझे तो इतना नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन सुना है कि वो सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो क्या बन जाता है, कायम मकाम सदर बन जाता है या स्पीकर बन जाता है, जो भी एक बन जाता होगा, बारी बारी छेद बन जाते होंगे, जंप देखते होंगे, सिदारत की कुर्सी का जंप कैसा, वजारत की कुर्सी का जंप, खैर बहरहाल तो बन जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए। तो अब वो इख्तियार तो रखता है उतने दिन तक, लेकिन वो सदर तो नहीं है ना, वो तो नहीं है ना, नाइब है। तो भाई ये याद रखिए, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज होने का मतलब क्या है कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इख्तियार नहीं देगा तो वो निज़ाम कैसे चलाएगा उसकी ज़मीन पर। निज़ाम चलाने के लिए इख्तियार दिया है ना, इख्तियार दिया है तो काम लेकर आगे चल रहे, लेकिन वो उलूहियत तो नहीं दी उसको, खालिकियत थोड़ी दी है। हाँ मोजज़े दिए हैं, विलायत तकवीनी दी है, इख्तियार दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन उसका भी खालिक वही है असल में। खालिक कौन है? वही परवरदिगार जो इस पूरी आलमीन का खालिक है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, यानी अगर मासूम से किसी मोजज़े का इजहार हो रहा है तो ये उसके लिए वहाबी है, यानी अल्लाह ने उसे अता किया है, अल्लाह ने उसे दिया है, और अल्लाह के लिए वो क्या होगा? जाती होगा। अल्लाह के लिए वो फेल क्या है? जाती है। और इस अल्लाह के लिए मोजज़ा नहीं कहलाएगा, अल्लाह के लिए मोजज़ा है सूरज को मशरक के बजाय मगरिब से निकाल दें, मोजज़ा तो नहीं वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए क्योंकि उसके लिए जाती है ना, वो मालिक है, वो खालिक है कायनात। लेकिन अगर रसूल सूरज को पलटा दे या इमाम सूरज को पलटा दे तो ये मौजूदा कहलाएगा। अब इससे आसान मिसाल सरकार नहीं हो सकती है कि अल्लाह के लिए कोई चीज मौजूदा नहीं है कि अल्लाह ने आसमान को खल कर दिया, अल्लाह ने सात आसमानों को बना दिया, अल्लाह ने सात जमीनों को बना दिया, अल्लाह ने आलमीन को बना दिया, अल्लाह ने खरबा खरब सितारे बना दिए। कोई कहता है कि अल्लाह का मौजूदा, अल्लाह का मौजूदा कहां से आया? अल्लाह तो खालिक है अर्श का, कुन फयकून, वो कहता है हो जा, हो गई। अब यहीं से बात हमें समझ लेना चाहिए, जो इधर उधर भटकते हैं ना उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि मासूम क्या है। मासूम के लिए हम कहते हैं मौजज़ा। मासूम अगर मुर्दे को जिंदा कर दे और जिंदे को मुर्दा कर दे, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। वो जब मैंने जिंदा को मुर्दा करने की बात की तो तमाम मोमिन समझ गए होंगे, उस इशारे को पहुंच गए। तो यही इसमें अच्छा लगता है कि इशारे से आदमी पूरा आखिर तक कहानी तक पहुंच जाए, सब आखिर तफसील तक पहुंच जाए तो उसमें ज़्यादा लुत्फ आता है इशारे किनारे में बात करने में, और वक्त भी बच जाता है। तो समझ में आ गई बात, हम कहते हैं इमाम का मौजज़ा है ना, इमाम का मौजज़ा है क्योंकि इमाम को अल्लाह ने अता किया है। अल्लाह के लिए कोई चीज़ मौजज़ा थोड़ी कहलाती। अगर अल्लाह जनाब मूसा से कलाम करे, कभी दरख्त से आवाज़ आए, कभी आग से आवाज़ आए, कभी पार कोहे तूर पे जलवा एक बर्क चमके, जलवा यानी चमके, जलवा तो अल्लाह का जलवा तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक बर्क तो चमकी ना वहाँ पे कुरान के बगल, तो बर्क एक लहराई, एक बिजली चमकी वहाँ पे, तो अब ये क्या हुआ? अल्लाह का मौजज़ा थोड़ी हुआ अल्लाह के लिए। लेकिन नबी अगर ये काम करेगा तो मौजज़ा हो जाएगा, पैगम्बर करेगा तो मौजज़ा हो जाएगा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा करेंगे तो मौजज़ा, जनाब मूसा अपने असा को फेंके वो अजदा बन जाए तो मौजिज़ा। मासूम के लिए मौजिज़ा है, अल्लाह के लिए मौजिज़ा थोड़ी है, मासूम के लिए मौजिज़ा है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसीलिए जब अंबिया को मबूस करता है, जब पैगंबरों को मबूस करता है, जब रसूलों को मबूस करता है, जब अइमा ताहिरीन को भेजता है तो मौजिज़े देकर भेजता है, मौजिज़े देकर भेजता है ताकि लोग ईमान ले आए इन पर। अल्लाह के लिए मौजिज़ा थोड़ी है कोई, वो तो खाली खैर शे का, वो कहता है हो जा, चीज हो गई। एक सलावात और भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए अब बात इतनी सब समझ में आ गई कि क्यों इनको हक दिया शिफात का, इख्तियार कब देगा। और देखिए हमेशा अगर अभी जो जैसे हमने बात को शुरू में कहा था कि ना अहलों के हाथ में अगर लग जाए चीज तो तबाह बर्बाद हो जाती है ना, नाइब अगर ना अहल होगा तो क्या होगा, चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ना अहल होगा तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, अहल होगा तो आगे चलेंगी। वो जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, ना अहलों के हाथ लग गया, हर चीज़ बर्बाद हो रही है, हर चीज़ तबाह हो रही है, बस दुआओं पे चल रही है गाड़ी, और ये हो रही है दुआ के परवरदिगार कोई मौजज़ा हो जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाए। अब तो मौजज़े से ही ठीक हो सकती हैं, आदमियों से तो ठीक होने वाली है नहीं यहाँ की चीज़ें, जो खराबियाँ आ चुकी हैं सारी की सारी सूबे से लेकर पूरे मुल्क तक, तो वो अब आदमियों से तो ठीक होने वाली नहीं है। हाँ मौजज़े से हो जाए तो कहते हैं ना कि मायूस मत होना भाई, दुआ करते रहना, उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई मुजीजा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये देखें ना कि जो रियासत खुद दहशत गर्दों को पाले वहां कैसे आप तवक्को करते हैं कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, जहां सियासी रहनुमा बड़े बड़े मुल्क के रहनुमा दहशत गर्दों की सरपरस्ती करें, वहां कैसे आप तवक्को रखते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं ठीक होंगी। ये हुकूमतों का काम नहीं होता, ये रहनुमाओं का काम नहीं होता कि वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करें। अपने शहरों के अमन अमान को तबाह बर्बाद कर डालें, मोहब्बत के बजाय नफरतों के बीच बोए जाएं, हर एक के लिए काम करें, नफरतें फैलाने के लिए जितनी दुश्मन ताकतें उन सबके हाथों में खेल लें, और जो चाहे जिसका जी चाह रहा है वो यहाँ पे अपने एजेंटों के जरिए से जो मर्जी कर रहा है जैसे कर रहा है। ऐसे चलती रियासतें, ऐसे चलते हैं मुल्क, इस तरह से अपने लोगों को दहशतगर्दों के सामने डाल दिया चारा बना के, कि जो चाहो करो इनके साथ, जो चाहो इनके साथ सुलूक करो। शहर तबाह हो रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को कोई होश नहीं आ रहा। खैर जनाब, अब ये बात फिर नामालूम कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो इख्तियार किसे देकर जाते हैं? जो अहल होगा, अहल ना अहल होगा तो इख्तियार नहीं दिया जाएगा। अंबिया को भी यही हुक्म था, जब एक नबी पर्दा फरमाता था वसी बनाए बगैर कोई नबी नहीं गया। याद रखिए, बिल्कुल एक अलग टॉपिक है औसिया का। कोई नबी नहीं गया दुनिया से जब तक उसने वसी नहीं बनाया। जनाब आदम ने सबसे पहले वसी करार दिया था ना, जनाब शीस को, अपने बेटे को जनाब शीस को। इस तरह जो भी नबी गया वो वसी बना के गया। आप जानते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वसी थे कौन? जनाब हारून अलैहिस्सलाम। लेकिन आपके सामने इंतकाल हो गया था ना, तो किसे बनाया वसी? जनाब यूशा बिन नून को। क्योंकि वसी बनाए बगैर कोई नबी नहीं जा सकता, नबी अहल को बनाया जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद ये होता था कि उसके बाद जो दूसरे चौथे पांचवें आते थे उसके बाद तहरीफ हो जाती थी, मामला खत्म हो जाता था। लेकिन अब पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलावत भेजिए दानिया। एक बार और सलवात दे। अब क्योंकि कोई और दीन नहीं आएगा ना, ना कोई किताब आएगी, ना कोई पैगंबर आएगा, और ना कोई रसूल आने वाला है, कोई नया दीन भी आने वाला नहीं। जैसा अब वसायत का मसला कैसा था, अब अल्लाह का रसूल किसे वसी बना के जाए कि कयामत तक दीन की हिफाजत का सिलसिला जारी रहे, कयामत तक दीन की हिफाजत का सिलसिला। अच्छा, जिसको नाई बनाए इख्तियारात कैसे हों? देखिए, इसीलिए कदम कदम पे हुजूर फरमाते रहे कि ला नबी अमिन बादी, मेरे बाद कोई नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आज तक मौला अली को किसी शिया ने नबी कहा, रसूल कहा, पैगंबर कहा? अजीब दुनिया है। हम कह रहे हैं कि अली सब कुछ है रसूल के बाद, फिर नहीं सुनते हमारी, न मालूम कहाँ कहाँ की आवाज़ें उनके कानों में आ जाएंगी, जो हमारी बात है वो कान में नहीं आती। ये अजीब तुरफा तमाशा है। मैं एक अपने बिरादर अजीज़ मेरे बैठे थे, उनसे बात कर रहा था। आपको मालूम है कि पड़ोसी मुल्क में मलून ने कुरान मजीद में तहरीफ का वो मुकदमा किया था, हालांकि उसको सूरह फातिहा भी नहीं पढ़नी आती, मैं जानता हूँ, उनको कुछ नहीं आता। और वो कैसे निकालेगा 26 आयतें, उसको क्या पता किस आयत में क्या लिखा है, उसे उर्दू सही नहीं आती तो वो कहाँ से अरबी निकालेगा। तो वो जनाब उसने उसको ज़ाहिर प्लांटेड था, निकाला गया उसको। अब वो क्योंकि उसका ताल्लुक ख़ानदानी तौर पे, पैदाइशी तौर पे हमसे था, रिजी था, अब वो सब हमारे पीछे पड़ गए दुनिया में। साहब हम कह रहे हैं कि हम में से नहीं है भाई, इसके इर्तिदाद का फतवा कर लगा दिया हमने, हमारे उलमा ने इसके इर्तिदाद का फतवा लगा दिया, इसका हुक्म हो गया कि इसको कब्रिस्तान मर जाएगा तो हमारे कब्रिस्तान में जगह भी नहीं दिया। उसकी कब्र थी वो भी मनसूख कर दी गई, कब्र जो होती वहाँ पर पहले से खरीद लेते हैं लोग, वो भी मनसूख कर, कह रहे नहीं मान रहे। तो हमारे एक दोस्त हमारे पास बैठे थे, बिरादर मकतब के हमारे साथी, तो यही बहस चल रही थी। तो हमारे पास इस वक्त भी किताब खाने में मौजूद एक किताब है, जनाब सिद्दू शुहदा के खिलाफ, उनके क़याम के खिलाफ लिखी गई, और बड़ी बहुत ही बद तहजीबी की ज़बान है उसमें, और ना मालूम क्या क्या इमाम हुसैन को करार दिया गया, खारजी करार दिया गया, और सब कुछ माज़ल्ला माज़ल्ला। वो किताब मैंने ला के सामने रख दी, मुसन्निफ़ का नाम भी मुझे है, दो तीन ने लिखी है, बहरहाल एक की मेरे पास आ गई थी। तो मैंने उनके सामने उनका ये क्या है, आप क्या लिख रहे हैं, आपने क्या लिखा? अच्छा, मैं किसी वजह से कह रहा था ना, मुझे मालूम था कि इनका जवाब क्या होगा। वो फौरन कहने लगे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे मकतब का नहीं। मैंने कहा मैंने मान लिया, मैंने कहा मैंने मान लिया, हालांकि मैं भी जिद कर सकता हूँ आपसे, मैं भी कह सकता हूँ नहीं आपका है। ये कह रहे थे कि इसने लिखा है कि मैं कहूँ, ये लिख रहा है कि मेरे सुन्नत कहूँ, लिख रहा है, लिखा है मेरे, लेकिन आपने कहा मैंने मान लिया, आपने कहा मैंने मान लिया कि इसका आपसे, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि वो हमें से नहीं तो आप नहीं मान रहे। जब मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा जब मैं कह, अब वो फिर शर्मिंदा हो कह ले, अब मेरी समझ में आ गया आप कह रहे। मैंने यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम कह रहे हैं, हमारा पूरे उलमा कह रहे हैं, मुस्तनद उलमा कह रहे हैं कि हम में से नहीं है, तो लेकिन आप सब पीछे पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, आपका है ये, आपका है, आप तो फिर ये भी आपका हुआ ना, हम भी इसको लेके पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटें फिर। और ये जितने भी बकवास करते हैं अहले बैत के खिलाफ नाम ले लेके, और ये जितने भी जो नारे लगाते हैं, देखना वो दिल की बात बाहर आ गई थी ना सड़कों में पिछले साल आ गई थी ना, उसकी हिमायत में नारे लगाते हो मलून यजीद की, तो फिर हम सबको आपके खाते में डाल देना, हम भी आपके हिसाब में डाल दें सबको। लेकिन नहीं, इंसाफ की बात है कि हम जानते कि नहीं, हमारे मकतब बिरादर मकतब का इससे कोई ताल्लुक, अहले सुन्नत की अक्सरियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप भी हमारी बात मानिए ना भाई, आप हमारी बात नहीं मान रहे। खैर जनाब, तो इतनी बात हो गई कि हम जब कह रहे हैं कि मौलाए कायनात सब कुछ हैं, अली सब कुछ हैं, मगर रसूल के बाद, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे हमारी बात? वो आप दो चार आदमियों के जो प्लांटेड लोग हैं उन्हीं के नारों को लेके आप क्यों हमारे पर चढ़ाई कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, वली को यूं कहते हैं, वली को नुसैरी फला कहता है, नुसैरी खुदा कहता होगा, भाई हमसे क्या ताल्लुक है? हमसे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि अली सब कुछ है मगर रसूल के बाद है। बस जब, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया ना कि ला नबी अमीम बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, कोई नबी नहीं आने वाला, लेकिन इख्तियारात तो रसूल ने दिए ना। बस ये आखिरी बात करना चाह रहे हैं, इख्तियारात दिए कि नहीं दिए? देखिए माना में तब्दीली कर सकते हैं, जो चाहे मफहूम बदल दें, लेकिन जो हदीस के, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जो फरमान है रसूल, हदीस में तो फरमान कहता हूँ, फरमान है रसूल पैगम्बर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको मैं कोई तहरीफ सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, उसमें आज तक 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, उसमें आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तब्दीली कर देता। 1430-32 साल हो गए हिजरत के, हिजरी साल के एतबार से, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सका, और सब जा और लिखते भी सब हैं, बाद में तशरीह कुछ भी करते रहे, वो जाहिर है कि वो तिनके वाला हिसाब आ जाता है, उसमें कोई ना कोई ने तावील करनी पड़ती है, लेकिन जुमले तो महफूज हैं, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीन मौला, तो जिस जिसका मैं मौला उस उसका ये, यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि इस कौल के बावजूद हमने रसूल के उस फरमान को नहीं बुलाया कि इख्तियारात सब हैं अली के पास मगर अली नबी, ये होती है नियाबत, इसको हम कह रहे हैं नियाबत, यह है नियाबत, अली नाइब है, इख्तियार भी सब रखता है, इख्तियार मौलायत का इख्तियार है ना, मौलायत का इख्तियार भी रखता है, लेकिन रसूल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह नाइब इमाम को, वो नाइब है मगर ऐसा नहीं है कि हम उसको मासूम समझते हों या उसको इमाम का दे, नहीं, नाइब इमाम का लफ्ज ही बता रहे कि नाइब है, इमाम मासूम नहीं है। और वहां तो अली की विलायत का मकाम क्या है, ये तो कोई मुकाबला भी नहीं है, नाइब इमाम से तो अली की विलायत का कोई मुकायसा ही नहीं है, अली की विलायत तो वो इख्तियारात हैं जो अल्लाह के, अल्लाह ने अपने रसूल को, रसूल से अली को मिले हैं, यानी तमाम इख्तियारात सिवाय इस बात के कि ना अली अल्लाह है ना अली रसूल है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए हुजूर की एक हदीस पे आज की मजलिस को ख़त्म करेंगे और कल इंशाल्लाह यहीं से बात का आगाज़ कर देंगे। लाशफअन्ना यौमल क़यामत लिमन काना फ़ी क़ल्बिही जनाहु बौज़तिन ईमाना, ज़रूर भी ज़रूर ताकीद है, यहाँ पे दो ताकीदें हैं, लाशफअन्ना नून ताकीद सकीला के लिए आखिर में आ गया और लाम लाम ताकीद पहले आ गया, लाशफअन्ना ज़रूर भी ज़रूर मैं शिफात करूँगा। अब ये हदीस आ गई और हदीस भी जनाब आपको उसका हवाला भी दे दूँ, ये गालिबा कंजल मैं लिख कर आया हूँ, कंजुल अम्माल हमारे दायरे के बिरादर मकतब की हदीस है और हदीस का नंबर है 39043 हदीस है, यानी 39043 ये हदीस का नंबर है कंजुल अम्माल की, हमारी ये हदीस हमारी किताब नहीं है, ये हमारे बिरादरान की किताब। लाशफअन्ना यौमल क़यामा, ज़रूर भी ज़रूर क़यामत के दिन मैं शिफात करूँगा। आगे शिफात, वो रिवायत, वो आयत और ये रिवायत, वो आयत और ये रिवायत, इंशाल्लाह दिरायत पर भी बात करेंगे, अभी तो हमारे पास हैं मजालिस, इंशाल्लाह जिंदगी रही आइंदा मजालिस में दिरायत पर भी बात कर लेंगे, आयत और रिवायत दोनों चीज़ें आ गई साथ। लाशफअन्ना यौमल क़यामत लिमन काना फ़ी क़ल्बिही जनाहु बौज़तिन ईमाना, ज़रूर भी ज़रूर मैं हर उस शख्स की शिफात करूँगा जिसके दिल में मच्छर के पर के बराबर भी ईमान हुआ। एक सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब मैंने अर्ज कर दिया कि मैं नाम ना लेता किताब का, तो लोग समझते भाई ये अपनी पता नहीं क्या क्या कहते थे, हमारी हदीसें तो हम बाद में पेश करेंगे जो हमारी किताबों में, अभी तो हम ये हदीस पेश कर रहे हैं लश्फान, और हमने हदीस नंबर भी इसलिए बता दिया कि किसी दोस्त को ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। और जाहिर है कि तो रिकॉर्ड हो रही है हमारी बातें, ऐसा तो है नहीं कि हम कह के चले जाएंगे, कोई हमें पूछने वाले ही नहीं होगा, वो जमाने तो गए। हाँ मुमकिन है जिल्द बदल जाए, क्योंकि कहीं कितनी जिल्दों में, कहीं कितनी जिल्दों में, जैसे किसी ज़माने में सही बुखारी एक जिल्द में थी, फिर 3 जिल्द में आई, फिर 20 जिल्दों में तशरीह होती गई ना, जिसने जो शरह लिखी, शरह बारी जो लिखी गई वो 20 जिल्दों में, किसी ने 24 जिल्दों में, किसी ने 30 जिल्दों में, तो फिर अलग है। तो जिल्द का हवाला देना तो फजूल है, हदीस नंबर हमने इसीलिए आपको बता दिया, लाजपान यौमल क़यामत, ज़रूर भी ज़रूर क़यामत के दिन उसकी शफ़ात करूँगा। लिमन काना फ़ी क़ल्बिही जनाहु बौज़ातिन ईमाना, जिसके दिल में मच्छर के पर के बराबर भी ईमान, क्या होगा? ईमान की बात हो रही है, यही तो नुक्ता है, बात हो रही ईमान की, कि ईमान होना चाहिए दिल में ईमान, क्योंकि ईमान का ताल्लुक दिल से है, ईमान का ताल्लुक जबान से नहीं है, जबान से है इकरार, इस्लाम है इकरारुम बिल्लिसान, इस्लाम का ताल्लुक है जबान के साथ, जबान से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ये हो गया इस्लाम, हो गया। ईमान का ताल्लुक किससे है? दिल से है। अब दिल में मच्छर बराबर भी, मच्छर के पर बराबर, मैंने फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हदीस हमारे यहाँ नहीं है, हमारे बिरादरान की हदीस है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, खुद फरमा रहे कि इस्लाम का जिक्र नहीं किया, ईमान का जिक्र किया। क्यों? ईमान का ताल्लुक होता है दिल के साथ, ईमान का ताल्लुक किसके साथ है? इस और इसीलिए हुजूर ने हदीस में भी क्या फरमाया, जिसके दिल में लमन कान फी कल्ब ही, जिसके दिल में जना हो बाउजतिन ईमाना, मच्छर के पर के बराबर भी ईमान होगा, लाशफाना यौमल क़यामा, मैं उसकी ज़रूर भी ज़रूर क़यामत के दिन शिफात करूँ। मालूम हो गया, इकरारुम बिल लिसान और है, तस्दीकुम बिल कल्ब और है, ईमान है दिल से तस्दीक करने का नाम। सलावात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब यहीं से इंशाल्लाह, अभी मतलब मुकम्मल नहीं किया, इस मतलब को इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं, कल बयान कर देंगे तीसरी मजलिस में, लेकिन आज हमने यहीं तक रखा, क्योंकि वक्त हमारे पेश नज़र है, उस वक्त को भी हमें अपने सामने रखना है। बस अजीज याद रखिए, हमने जो बात अर्ज की थी कि अब कोई दीन का, कोई पैगंबर, कोई नया दीन, कोई नई किताब, ये सब नहीं आने वाले, कोई दीन की नई शेव, नई दीन का नया वो सांचा या ढांचा नहीं आने वाला, दीन जो था वो मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल सूरत में आ गया। अब दीन की हिफाजत की ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत है? हिफाजत, दीन रहेगा बस, कैसा मुहाफिज होना चाहिए? जो कयामत तक दिफा करे, वो सामने से हट जाए, पर्दा फरमा ले, उसके बाद वाले हिफाजत करें, और कयामत तक ये सिलसिला चले। तो अब समझ में आया अली को मौला बनाने का एक हिकमत और सामने आती है, और बहुत सारी हैं, एक हिकमत ये भी सामने आई कि कयामत तक अली और औलाद अली जब जब दीन पर वक्त पड़ेगा दिफा करते रहेंगे, और जो आखिर में आने वाला होगा वो कौन होगा? वो भी अली का बेटा है ना, वो भी फातिमा का लाल है ना। बस यही वो मकसद है, यही वो हदफ है, यही वो मिशन है, कि पूरी दुनिया कहती है कि दीन अस्त हुसैन दीन पनाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। और बच्चों को मैं पूरी रुबाई यूँ नहीं पढ़ रहा हूँ कि हर बच्चे बच्चे को याद है, ज़रूरत नहीं, लेकिन बात समझाने के लिए, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। यानी करबला में पूरी लड़ाई किसकी लड़ी गई? पूरी दुनिया जानती है कि सारी जंग है दीन को बचाने की, दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया। और यही इसीलिए जो हमने जहाँ पे बात को शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, कि यह अल्लाह का वादा है कि तुम मेरे ज़िक्र को ज़िंदा करो, मैं तुम्हारे ज़िक्र को ज़िंदा करता हूँ। और मुताज़िद मकामात पर मैं ये बात कहता हूँ कि ज़िक्र हुसैन हमारा मरहून मिन्नत नहीं, हमारा मोहताज नहीं, हम ज़िक्र हुसैन के मोहताज, हमने ज़िक्र हुसैन को ज़िंदा नहीं रखा, ये ज़िक्र हुसैन है जो हमको ज़िंदा रखे हुए हैं। ज़िक्र हुसैन ने हमें इज़्ज़त दी है, दुनिया की कौमों में मुमताज़ बनाया है, और दुनिया की कौमों में सर उठा के जीने के काबिल बनाया है इस ज़िक्र हुसैन। मुहर्रम की 2 तारीख है ना, हम आज ज़िक्र कर रहे हैं हुसैन का, लेकिन उस वक्त क्या आलम था हुसैन पर? हुसैन करबला के दश्त में जब रुके हैं तो उनके साथ शायद 200-300 लोग थे, वो बाकी तो बाद में चले गए ना, 972 रह गए, लेकिन जब आए हैं ये 200-300 कितने होते हैं? कुछ भी तो नहीं होते। आज 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे हुसैन तो माहौल दूसरा है। हम आज पूरी दुनिया में तमाम तर सख्तियों के बावजूद करोड़ों की तादाद में, और बल्कि सारे इंसानों को मिला तो कई अरब लोग हुसैन की याद मना रहे हैं, याद तो मना रहे ना हुसैन की किसी ना किसी सूरत। लेकिन उस वक्त क्या था? उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बहन भाई को बुलाकर कहती थी, भैया कोई आपका दोस्त नहीं? रिसालों पर रिसाले, दस्तों पर दस्ते आ रहे हैं उस तरफ से, आपका कोई दोस्त नहीं? खैर, उस मुजाहिद का जिक्र तो हम कल करेंगे, लेकिन आज जो बात आपकी खिदमत में रखना है वो मशहूर मारूफ रिवायत है कि आपको मालूम था कि मंजिल आ गई, यही मंजिल है हुसैन की, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिरी तौर पे ऐसा हुआ कि आपकी सवारी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जो रिवायात है मकातिल को ये बताती है, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बदली सवारी हुसैन ने, दूसरी तीसरी, कहते हैं कि 7 सवारी तक बदल ली। खैर, जितनी भी सवारियां बदली, जब कोई सवारी आगे ना बढ़ी तो फिर हुसैन ने सवाल किया, आसपास कोई बस्ती है? बताया गया बनी असद के लोग आबाद, बुलाओ। बनी असद के लोगों को मालूम हुआ कि फरदंद रसूल तशरीफ लाए हैं, दौड़ के पहुंच गए। सलाम दुआ के बाद कहते हैं कि मौला जितनी जल्द हो सके फरदंद रसूल यहां से तशरीफ ले जाइए। क्यों? कहा हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि यहां से, इस जमीन से कोई नबी या नबी ज्यादा सुकून से नहीं गया, तकलीफ देखे बगैर नहीं गया, गम देखे बगैर नहीं गया, लिहाजा आप जितनी जल्द हो यहां से। तो पूछा जनाब सिद्ध शोर ने, जमीन का नाम क्या है? कहने मारिया, शत्तुल फरात, नैनवा, ना मालूम कितने नाम बता दिए। ऐसा लग रहा है कि हुसैन भी कोई खास नाम सुनना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार, और कोई नाम, और कोई नाम, और कोई नाम। उन्हें 7-8 नाम बता दिए, और हैं भी, कर्बला की तारीख आप पढ़ेंगे तो कर्बला की जमीन के 7-8 नाम मिलते हैं, तो बताते जा रहे हैं। और हुसैन है कि फिर पूछते हैं और कोई नाम, और कोई नाम। आखिर किसी ने दबी जबान से कहा कि मौला इसको कर्बोबला भी कहते हैं। बस ये सुनना था कि हुसैन ने सवारी से उतरे हुसैन और एक कलमा जबान पे जारी किया, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवारियां बिठा दो, नाके बिठा दो, खेमे लगाने का बंदोबस्त करो, मुझसे जो कहा गया वो सही कहा गया, ये वही जमीन है जिसका हुसैन से वादा किया गया है, यही हमारे खेमों के लगने की जगह, यही हमारे जानवरों के बांधे जाने की जगह है, और यही हमारी कत्लगाह है, यही हम मारे जाएंगे, यही शहीद किए जाएंगे, और कयामत के दिन यहीं से हम उठाए जाएंगे। अभी ये हुक्म दे रहे थे कि जनाब फिजा दौड़ी दौड़ी पहुंचने का, शहजादे आका आपको सानिया जहरा ने सलाम भेजा है। हुसैन आए, नाके बैठाए जा चुके हैं, लेकिन अभी महमिलों से, अमारियों से बीवियां उतरी नहीं हैं। बहन के नाके के पास आए, बहन ने महमिल में से सलाम किया, कहा भैया ये कौन सी जगह है? यहाँ मेरा दिल बैठा जाता है, यहाँ की हवा से, यहाँ की मिट्टी से मुझे आपके खून की बू आती है, जितनी जल्द हो सके जगह को तर्क कर दीजिए। आगे बढ़े, सर झुका के फरमाते हैं सिदना बे सिदे शोदा के, बहन अब हम कहीं जाने वाले नहीं, यही वो जगह है जिसका हमसे वादा किया गया। तफसील बताएं, बहन का गिरिया थमने का नाम नहीं लेता था। वापस आए, जमा किया बनी इसद के लोगों को, ये जमीन मुझे बेच दो, फरोख्त कर दो। कहा हम आपको वैसे ही हिबा करते कि नहीं खरीदना है? तो कहते हैं कि 60,000 दिरहम में मामला तय हुआ, 60,000 दिरहम दिए गए, मुकातबा हुआ और ज़मीन हुसैन के हवाले। ज़मीन लेने के बाद, ख़रीदने के बाद हुसैन इकरार लेते हैं कि ज़मीन मेरी है, कि 3 शर्तों के साथ तुम्हें वापस देता हूँ, 3 शर्तों के साथ हिबा करता हूँ। कहते हैं देखो, कुछ दिनों के बाद, पहली शर्त बताई कि कुछ दिनों के बाद हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारे कातिल अपने कुश्तों को तो दफनाएंगे, हमारी लाशें यूं ही छोड़ जाएंगे, हमारी लाशें तुम्हें दफनाना होंगे। दूसरी बात देखो, इस ज़मीन पे खेती बाड़ी ना करना। अब देखिए जनाब सिद्दीक़ शुहदा की नज़रें कहाँ तक देख रही हैं, आप जानते हैं ना कि मेरे ज़ायरीन आएंगे लाखों की तादाद में आएंगे, करोड़ों की तादाद में आएंगे। अगर करबला में खेती बाड़ी होगी तो ज़ायर तो हर मौसम में आएगा ना, हर मौसम में, तो खेतियों को रौन देंगे। लिहाजा हुसैन ने शर्त लगा दी कि करबला की ज़मीन में कोई काश्तकारी ज़रात कोई नहीं करेगा, ताकि मेरे ज़ायरीन पर इल्ज़ाम ना जाए। अब अगर कोई करता है तो उसके वो ज़िम्मेदार होगा। हुसैन की ज़मीन है, करबला की हदूद में अब तक ज़रात नहीं होती। याद रखिए, करबला की जो वो जो हदूद है, करबला मक्तल जो है, उसके बाहर की ज़मीन पर काश्तकारी होती है, उन हदूद में काश्तकारी नहीं हो सकती, वो हुसैन की शर्त है, यहाँ पर ज़रात नहीं। तीसरी शर्त, कि देखो बहुत अरसे बाद हमारे चाहने वाले हमारी कब्रों की ज़ियारत के लिए आएंगे, उन्हें 3 दिन मेहमान रखना, उन्हें हमारी कब्रों के निशान बताना। और हुसैन की तसल्ली नहीं हुई, फिर पहली शर्त की तरफ वापस आ गए, देखो हमारी लाशें दफना जरूर देना। तसल्ली नहीं हुई, कहा अपनी खवातीन को बुलाओ। बनी असद की खवातीन ही कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं तो तुम आ जाना, सरों पे चादरें डाल के आना, हमारी लाशों को दफना देना। फिर भी तसल्ली नहीं हुई हुसैन की, कहा अपने बच्चों को बुलाओ। छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन दरमियान में बैठ गया। अब मैं चश्मे तसव्वुर से मंजर देख रहा हूं कि हुसैन के चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे हैं। हुसैन ने किसी बच्चे को उठा के एक जानू पे बिठाया होगा, किसी को एक जानू पे बिठाया होगा, बच्चों को प्यार करते होंगे। जब उनसे उनके बराबर यानी इस तरह से उनको मानूस कर लिया अपने से, तो अब जनाब सैयदुश शुहदा फरमाते कि देखो बच्चों अगर तुम्हारे बड़े डर जाएं, तुम्हारे माँ बाप डर जाएं, तो तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो ना, खेलते खेलते आना, अपने नन्ने नन्ने हाथों से हमारे लाशों पे एक एक मुट्ठी खाक के डाले। बस अजादारा ने हुसैन सद्दाम के दौर में बरसों तक ये बनी असद के लोग जो अपना मखसूस काफिला लेकर आते थे ये ना ला सके, लेकिन जब सद्दाम के दौर का खातिमा हुआ, आज़ादारी दोबारा हुई, तो सबसे पहले असर के वक्त ये हमेशा आते थे। अब भी ज़ाहिर है कि हज़ारों काफिले आते हैं, लेकिन उस वक्त ये मुशख्खस होता था कि इस वक्त असर के वक्त बनी असद का काफिला आएगा। आगे आगे मर्द, पीछे पीछे औरतें, सबसे पीछे बच्चे, और कफनी पहने हुए होते हैं, और हाथों में कुदाल और फावड़े होते हैं, और ये तमाम लेकर दौड़ रहे होते हैं कब्र हुसैन की तरफ, चिल्ला रहे होते हैं हुसैन हम आ गए, ऐन अल हुसैन, ऐन अबना अल हुसैन, ए हुसैन तू कहाँ है, ए हुसैन के बेटो कहाँ हो, हम अपना वादा पूरा करने आए, हम आपके लाशों को दफनाने के लिए आए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज जालिमीन वसयालमुल्लजीना ज़लमू अय्यामुन क़लीबिन यनक़लिबून मातम हुसैन।